ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय चौथा श्लोक क्रमांक 36। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव बृजिनं संतरिष्यसि। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत अत भी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रविवार के कार्यक्रम में। हर रविवार हम एकत्रित होते हैं ताकि हम अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी प्रकार से हम अपना मन भगवान में लगाएं। क्या सबको सुनाई दे रहा है? आज हम थोड़ा टेस्टिंग कर रहे हैं, पानी के साथ प्रवचन सुनाई देता है क्या? क्या है कि कभी कभी प्रवचन बोर हो जाता है तो पानी की आवाज से थोड़ा सांत्वना मिलेगी आपको, या इस तरफ देख देख कर बोर हो गए तो थोड़ा पानी की तरफ देखकर, भगवान की तरफ देखकर, ये न के न प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से हमें जागृत रहना है। सबको सुनाई दे रहा है पीछे तक? या ये सुनाई दे रहा है ना? तो हम एकत्रित होते हैं हमारा मन भगवान पर लगाने के लिए। और क्यों प्रयास करना पड़ता है हमें भगवान पर मन लगाने के लिए? इतना सारा प्रयोजन हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्वाभाविक रूप से येन केन प्रकारेण हमने मन माया निवेशयित कर रखा है। ये जो मन है इसे तरफ हमने लगा रखा है और उसके लिए भी प्रयोजन एक व्यक्ति को करना होता है। ऐसा नहीं कि माया में मन लगाने के लिए स्वाभाविक से कोई माया में मन लगा देगा, उसके लिए भी उसे प्रयास करने पड़ते हैं। तो माया से मन निकालकर कृष्ण के चरणों में मन लगाना, इसके लिए भी ये विधि भगवान ने दी है, भागवत विधि। और ये जो श्लोक आज हमने लिया, इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। और इस अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के विषय में कह रहे हैं। जैसे कि संस्कृत के एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतम गमय। कि बताया गया है कि यह भौतिक संसार किस तत्वों से बना हुआ है। असतोमा सद्गमय, ये भौतिक संसार असत है। असत का अर्थ क्या होता है? जो सत्य नहीं, उसे कहते हैं असत। अब देखिए, इस भौतिक संसार में कितनी ऐसी चीजें हैं, कितनी ऐसी वस्तुएं हैं, कितने व्यक्ति हैं, स्थितियां हैं, जो हम जिनके संपर्क में आते हैं हर क्षण हर रोज। परंतु यदि उसे असत कह दिया जाए तो हम कैसे समझेंगे कि ये भौतिक संसार से संबंधित जो कुछ है वो असत है? जैसे कि यदि कोई मुझसे पूछे कि प्रभु जी आपका परिचय क्या है, और मैं अपना परिचय दूं, मेरा परिचय है ये कुर्ता, तो कैसा लगेगा ये परिचय, मेरा कुर्ता? ये तो कोई परिचय हुआ नहीं, क्योंकि ये जो कुर्ता है ये मेरे शरीर के ऊपर है। और अधिकांश हम अपना परिचय देते हैं इस शरीर को लेकर कि मेरा पुरुष का शरीर है, स्त्री का शरीर है, भारतीय शरीर है, महाराष्ट्रियन गुजराती शरीर है, और भी कुछ हो सकता है, ये दो ही याद आए मुझे। तो हमारे जो परिचय होते हैं ये सब शरीर से संबंधित। परंतु गीता में भगवान ने कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि ये जो शरीर है ये एक कुर्ता है, किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। तो जैसे मेरे शरीर के ऊपर ये वस्त्र है, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर इस शरीर का वस्त्र है, शरीर रूपी वस्त्र है। तो यदि मैं अपना परिचय इस शरीर रूपी वस्त्र का दे रहा हूं तो ये ठीक परिचय है या गलत है? क्या कहना है, समझ में आया? ठीक है वो परिचय नहीं? हां शायद। तो इसीलिए इस भौतिक संसार में जब व्यक्ति एक भौतिक दृष्टिकोण में रहता है, उस भौतिक दृष्टिकोण को असत कहा गया है। ये भौतिक संसार असत नहीं है। जब हम अपने आप को भौतिक समझ लेते हैं, उस दृष्टिकोण को असत दृष्टिकोण कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये जो मंदिर का टेंपल हॉल है, अब इस टेंपल हॉल में हम सब बैठे हुए हैं, तो अलग अलग व्यक्ति इस टेंपल हॉल में जब आएगा, अलग दृष्टिकोण रहेगा। यदि कोई आर्किटेक्ट इस टेंपल हॉल में आता है, तो सबसे पहले देखेगा कि ये सिविल इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से बराबर बनाया है कि नहीं, कितने पिलर हैं, ये कितने बीम्स हैं और इसका नक्शा कैसा है, वो आकर यही देखेगा। कोई इंटीरियर डेकोरेटर अगर इस टेंपल हॉल में आएगा, तो उसका दृष्टिकोण क्या रहेगा, ये क्या कलर लगाया इन्होंने, ये पेंटिंग यहां पर नहीं और कहीं पर होनी चाहिए, ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए। तो उसका दृष्टिकोण अंदर से ये मंदिर कितना और सुंदर बन सकता है, ये उसका दृष्टिकोण रहेगा। एक छोटा सा बालक यदि इस मंदिर के हॉल में आएगा, तो उसको लगेगा अरे इतना बड़ा मैदान खेलने के लिए, ये लोग सब बैठकर क्या कर रहे हैं, फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। तो छोटा सा बालक, उसका दृष्टिकोण है कि इतना बड़ा हॉल खेलने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। कोई मछली अगर आए इस टेंपल हॉल में, तो उसका दृष्टिकोण कहां रहेगा, यहां। और उसे कोई सुंदरता नहीं देखना है, पानी कहां से कहां आ रहा है, पानी के अंदर जाना है। हम में से किसी को पानी के अंदर नहीं जाना, किसी को जाना, बस दूर से देखना। तो इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तिमत रहता है। एक ही वस्तु को, एक एक पदार्थस्तु त्रिधा भवति विक्षितः, नीति शास्त्र में कहा गया है कि कोई एक वस्तु होती है, परंतु लोगों का दृष्टिकोण उस वस्तु को देखते हुए अलग होता है। और एक सुंदर उदाहरण बताया गया है कि तीन प्रकार के व्यक्ति, एक सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, ये तीन प्रकार के व्यक्ति एक वन में जा रहे हैं, जंगल में। तो एक सत्वगुण का जो व्यक्ति होगा, जब वो जंगल में जाएगा, तो जंगल में सुंदर वृक्ष, इतने सुंदर फल फूल, सुंदर चिड़ियां और शांत वातावरण को देखकर एक सत्वगुणी व्यक्ति क्या सोचेगा, ये सबसे अच्छी जगह है भगवान का जप करने के लिए, भगवान के ऊपर ध्यान लगाने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं। ये एक सत्वगुणी व्यक्ति का विचार होगा। एक रजोगुणी व्यक्ति, वो जब उस वन में जाता है, जंगल में, वो जब देखता है इतने सारे वृक्ष, तो उसका दृष्टिकोण क्या है, अरे इस सारों को काट कर लकड़ी बेच कर पैसा कमाओ। जैसे एक परिवार में जो पुत्र थे उस परिवार के, वो हर समय चिंता में थे कि उनके पिता जो बहुत बड़े व्यापारी थे, हर समय उनका मन, धारणा, चेतना व्यापार में लगी रहती, पैसा, धंधा, दौलत, ये सब। तो उम्र हो गई इन पिता की, परंतु मन केवल पैसों में लगा हुआ है। तो इनके बच्चों को लगा कि अब इनकी उम्र हो गई है, इस उम्र में केवल पैसा पैसा कर रहे हैं, धंधा कैसे बढ़ाया जाए, ये वो, तो कैसे इन्हें अध्यात्म में रुचि लाएं इनकी। तो अलग अलग प्रकार के साधु महात्माओं से भेंट की, परंतु कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो इन्होंने एक बहुत बड़े महंत से संपर्क में आए और उन महंत जी को कहा कि किसी न किसी प्रकार से, ये न के न प्रकार न, हमारे पिता को आप भक्ति में लगाओ, ये सब धंधे से बाहर निकालकर। तो महंत जी ने कहा ठीक है, मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं, तो मेरे साथ तुम्हारे पिता को भेज दो, तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थान में जाकर धाम का प्रभाव होगा, साधु संग होगा, तो मन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो तीर्थ यात्रा के लिए निकले, तो अलग अलग तीर्थ स्थानों में ले गए, परंतु जिस किसी तीर्थ स्थान में इस व्यापारी को ले जाया जाता, हर समय मन केवल पैसों में, धंधे में। अरे यहां से वहां जाएंगे बस में, कितने चलकर जाएंगे, तो फुकट में काम हो जाएगा। तो ये महंत जी सोचे कि मैं इतने धाम में ले जा रहा हूं, इसका मन केवल पैसों में ही लगा हुआ, तो कैसे इसका मन बाहर निकाला जाए, कैसे इसको साक्षात्कार दिया जाए कि ये सब कुछ नश्वर है। तो अंत में ये महंत जी इस व्यापारी को वाराणसी ले जाते, बनारस, बनारस, तो बनारस में एक जगह है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। क्या है वो जगह, क्या है? श्मशान भूमि। और वो गंगा के तट पर है और वहां पर हर मिनट कोई मृत शरीर आता है, उसे जलाया जाता है, हर मिनट। तो महंत जी ने सोचा कि इस व्यापारी को मैं श्मशान मणिकर्णिका घाट में दिखाऊंगा, और कई बार वहां पर मणिकर्णिका घाट में जब शव को जलाया जाता है तो इतनी जल्दी में शव को जलाया जाता है कि शव भी दिखता है जलते हुए उस चिता में, तो उसे देखकर बहुत भयानक दृश्य होता है, हम स्वयं देखे हैं। तो वहां पर लेकर महंत जी इस व्यापारी के साथ बैठ गए और कहे कि इधर बैठकर अच्छा नजारा देखो। तो सामने मृत शरीर जलाए जा रहे हैं, एक के बाद एक मृत शरीर लाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। तो ये व्यापारी ध्यान से देख रहा था और महंत जी इसको ध्यान से देख रहे, और देखा इसके चेहरे पर अब कुछ परिवर्तन सा दिख रहा है। ये ध्यान से देखते हुए देखते हुए रोने लगा। तो महंत जी ने सोचा ये अंतिम गोली काम कर गई, अब कुछ परिवर्तन दिख रहा है, मन पिघल रहा है, रो रहा है, ये रोना शुरू किया इसने। और फिर जोर से कहा इसने, जीवन मैंने व्यर्थ गंवा दिया, हां अब इसके मुख से कुछ ऐसे साक्षात्कार निकले, जैसे कि देखिए, नीति में यह भी कहा गया है कि एक प्रकार का वैराग्य होता है जिसे कहते हैं स्मशान वैराग्य है? स्मशान वैराग्य सुना होगा। स्मशान वैराग्य के साथ एक और वैराग्य कहा गया है और वो उत्पन्न होता है, अच्छा हम खा लेते हैं उसी वस्तु के प्रति वैराग्य, खा पी लेने के बाद खाने का नाम नहीं अच्छा लगता, दूर करो अब सब कुछ प्लेट, सामने नहीं कुछ आना चाहिए, तुरंत वैराग्य कुछ समय के लिए, उसके पश्चात फिर से वो वैराग्य चला जाता है। तो स्मशान भूमि में भी व्यक्ति जो है बहुत विरक्ति के पाठ पढ़ते हैं और सुनाते हैं। लोग जब स्मशान भूमि में जाते हैं, चिता में मृत शरीर को जलते हुए देखते हैं, जीवन नश्वर है, देखो कल ये हमारे साथ हंस खेल रहा था, आज चिता में, और हमारा क्या भरोसा कल को हम भी यहां पर आ जाएं। लोग बहुत फिलोसॉफिकल बन जाते हैं स्मशान भूमि में। तो वहां पर वैराग्य की बातें बहुत होती है, परंतु जैसे ही स्मशान भूमि से बाहर आए, तुरंत घड़ी देखी, अरे ऑफिस का टाइम हो गया, या घर में ये करना है, ये बिल पेंडिंग है, पैसा, ये सब कुछ। परंतु यहां पर ये कोई स्मशान वैराग्य नहीं दिख रहा था इस व्यापारी के अंदर, ये बहुत भावना से कह रहा था कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, और अज्ञान में मैंने जीवन बिता दिया अपना। तो महंत जी बहुत खुश हुए, हां अब समझ में आया। तो फिर पूछा कि और क्या साक्षात्कार, तो कहा कि मैंने सही में मेरे पिता की बात मानी और मैंने एक कपड़ों का व्यापार शुरू किया। तो महंत जी सोचने लगे, ये क्या कहने लगा अब, बोले कपड़ों का व्यापार, बोले हां मैंने कपड़ों का व्यापार शुरू किया जो मेरे पिता ने दिया था, मूर्ख थे मेरे पिता, अरे यहां पर देखो लकड़ी का व्यापार करते, हर एक मिनट मृत शरीर जलाया जा रहा है, कितनी लकड़ी चाहिए इनको, अगर लकड़ी का व्यापार कर दे तो आज करोड़पति होते मेरे पिता और मैं भी, व्यर्थ जीवन गंवा दिया मैंने केवल ये कपड़ों के व्यापार में। तो एक जो रजोगुणी व्यक्ति यदि जंगल में जाता है, हम वो उदाहरण ले रहे थे यदि आपको याद है, तो एक रजोगुणी व्यक्ति जब जंगल में जाता है तो वो जंगल की लकड़ियों को देखकर उसकी धारणा क्या है कि कैसे व्यापार बढ़ाया जाए। एक तमोगुणी व्यक्ति उस जंगल में जाता है तो उसका दृष्टिकोण क्या है, इतने बड़े बड़े वृक्ष और इतनी ठंडी छांव, इतना शांत वातावरण, इतना मखमली घास, सोने के लिए इससे उपयुक्त जगह और कहां। तो तमोगुणी व्यक्ति उसी जंगल को देखकर सोने जाएगा, सत्वगुणी व्यक्ति भगवान के ध्यान में लगेगा, रजोगुणी व्यक्ति काट कूट कर बेच देगा। तो इसीलिए इस संसार में हमारा जो व्यक्तिमत होता है वो निर्धारित करता है कि ये संसार सत है या असत है, क्योंकि भगवान जब अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करो, परंतु युद्ध के साथ साथ कहते हैं माम अनुस्मर युद्धच, कि युद्ध च के पहले मां मनुस्मर है, पहले मेरा स्मरण करो और उस स्मरण में युद्ध करो। युद्ध एक भौतिक कार्य है, कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं। युद्ध करने से कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला। परंतु भगवान अर्जुन को माम अनुस्मर युद्ध ज इसलिए कह रहे हैं कि मेरा स्मरण कर कर जब युद्ध करोगे तो वो युद्ध करने की जो क्रिया है वो भौतिक नहीं रह जाएगी, वो आध्यात्मिक में परिणित हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है असतो मा सदगमय और तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि इस भौतिक संसार को तमस कहा गया है। तमस किसे कहते हैं? अंधेरे को। जैसे कि यहां पर इतनी सारी लाइट लगा रखी है तब जाकर हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसमें भी कभी कभी हम अंधेरे में चले जाते हैं इतनी लाइट लगाने के बाद भी। तो ये जो भौतिक संसार है ये स्वाभाविक रूप से तामसिक है, जिसके अंदर अंधेरा है। इसीलिए भगवान ने इस अंधेरे संसार को प्रज्वलित करने के लिए अपना एक बल्ब लगाया है, सूर्य। वो इतना बड़ा हेलोजन है कि ये पूरे विश्व को प्रज्वलित करता है रोज। और जब भगवान अपना हेलोजन बंद करते हैं तो देखो हमें कितने लगाने पड़ते हैं यह है भगवान की खूबी कि भगवान ने केवल एक ऊपर लगा दिया और हम पूरे सारे मनुष्य समाज साइंटिस्ट वैज्ञानिक मिलकर भी संसार के जितने हैलोजन लाइट लगा लें परंतु सूर्य की जितनी रोशनी पैदा नहीं कर सकते, पूरे विश्व को प्रकाशमान हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तमस अंधेरा है और अंधेरे की तुलना की गई है अज्ञान से। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में सुंदर श्लोक में कहा गया है कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण ताहार नहीं मायार अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान, जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं। इसका उल्टा क्या है? जहां कृष्ण नहीं वहां माया ही अधिकारी है। तो अज्ञान, अब इस भौतिक संसार में देखिए यदि हमें कुछ प्राप्त करना है भौतिक रूप से भौतिक चीज, उसे प्राप्त करने के लिए भी हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के हम भौतिक वस्तु भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे कि बंबई में हमने देखा ये जो भिखारी होते हैं बंबई के, ये इतने निपुण होते हैं भीख मांगने में कि उनको ज्ञान है कि भीख कब कहां कौन से व्यक्ति से और कैसे। ये सही एक बहुत विशिष्ट ज्ञान उन्हें ट्रेनिंग मिलता है। शायद बंबई में कोई भीख मांगने का प्रशिक्षण केंद्र भी होगा जहां पर ट्रेनिंग दिया जाता होगा कि भीख कैसे मांगी जाए। यदि हमें कोई कटोरा थमा दे जाओ भीख मांगो तो हो सकता है कोई कटोरा भी छीन के ले जाए, भीख देना तो दूर की बात है। परंतु हमने देखा है, ये उदाहरण में एक बार दे रहा था कि चर्चगेट पर हमने गीता का स्टॉल लगाया था और उसके बगल में एक भेलपुरी वाला भेलपुरी का स्टॉल था, तो लोग आते थे ज्यादा उधर आते थे। तो लोग जब भेलपूरी खाया करते थे तो हम कुछ बोलते थे कि जीवन में हमें यदि वास्तविक रूप में अपने उद्देश्य को जानना है तो हमें भेलपुरी नहीं जगन्नाथपुरी के विषय में जानना चाहिए। तो उधर हम देखते थे कि लोग आते थे और कहते थे, ऑर्डर करते थे, भेलपुरी बना कर दो भाई। वो व्यक्ति को थोड़ा समय लगता था भेलपुरी बनाने में, वो बनाकर घुमा फिरा कर वो उसके अंदर देकर सब कुछ डालकर उसको जब थमाता था हाथ में, ये लो आपकी भेलपुरी, और वो जब वो खाने जाने वाला रहता था तभी वो भिखारी वो वेट करता था उसको बना लेने दो, बना के जब उसके हाथ में देगा, जब वो खाने जाएगा तब वो आता था भूख लगा है, दो दिन से खाया नहीं। तो ये व्यक्ति अब सोचता था कि अभी क्या करूं, खाऊं उसको, ये ले एक और बनाओ। तो भिखारी को पूरा पक्का ज्ञान होता था कि कौन से व्यक्ति से कौन से समय कैसे भीख मांगनी चाहिए। जैसे हम कई बार ये गजरा वाले होते हैं, गजरा लेकर सिग्नल पर घूमते रहते हैं। तो एक बार एक छोटा सा लड़का, मैं एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे, तो वो गजरा लेकर वो मुझे पूछ रहा है गजरा। अब शायद दिन में कोई खरीदा नहीं होगा तो सोचा कि चलो पूछ लेते हैं, साधु महात्मा गजरा लगाएंगे क्या। तो पहले तो मैं हंसने लगा, मैं बोला तुम सीरियस हो कि मैं लूंगा गजरा। तो मैंने कहा कि ठीक है तुम हमारे भगवान के लिए दो, भगवान के मंदिर के लिए। तो उसने कहा क्या मिलेगा, तो मैंने कहा भक्ति मिलेगी। तो वो व्यक्ति, देखिए वो व्यक्ति इतने सरल हृदय का, छोटा सा लड़का था वो, इतने सरल हृदय का था, उसने निकाल कर बोला एक नहीं ले लो दो, और अपने भगवान को मेरे नाम से चढ़ा देना। तो मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा अहमद, मुसलमान था। तो उसके बाद जब भी मैं कोई गजरे वाले को देखता हूं तो पहले बुलाता हूं, पहले तो वह आश्चर्य करता है ये क्यों बुला रहा है, और मैं जिससे भी कहता हूं कि भगवान के लिए तुम्हारी तरफ से, तो तुरंत वो निकालकर, कभी कभी कुछ समय लगता है परंतु निकालकर दे देता है। तो ये जो भिखारी होते हैं, हम फिर से हमारे पॉइंट पर आ जाते हैं, ये जो भिखारी होते हैं इनको भी ज्ञान होता है कि कहां पर कैसे भीख मांगनी चाहिए। बिना ज्ञान के ये भीख भी पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। एक व्यक्ति अपनी कार लेकर मैकेनिक के पास गया, कार चल नहीं रही थी, तो मैकेनिक ने एक हथौड़ा लिया और जोर से बॉनेट पर मारा, चालू करो कार। वो चालू हो गई, बोला यार तो अजीब मैकेनिक है, हथौड़ा मारकर गाड़ी चालू करता है। तो सोचा अच्छा हुआ मैं नहीं गया इसके पास, गाड़ी को लेके। तो अब उसने गाड़ी चालू कर कर और जाने लगा, तो मैकेनिक बोलता भाई पैसे पैसे कौन देगा। बोले कैसे पैसे, अरे भाई तुम्हारी गाड़ी खराब थी, गाड़ी ठीक क्या किया तुमने, तो एक हथौड़ा मारा खाली। बोला 1000 रुपया है इसका। 1000 रुपया एक हथौड़ा मारने का। बोला हथौड़ा भी उतने नहीं आएगा, हथौड़ा भी सस्ता आता है। तो उसने कहा कि 10 रुपए हथौड़ा मारने के और 990 रुपए कहां मारने के। हथौड़ा तो कोई भी मार सकता है, परंतु वो हथौड़ा कहां पर मारना है इसका ज्ञान जो मुझे है उसके 990 रुपए। तो इस भौतिक संसार में देखिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किस लिए? ताकि उस ज्ञान से वो अपना जीवन यापन कर पाए। परंतु भगवान इस अध्याय में जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान, इसलिए इसे दिव्य ज्ञान कहा है, भौतिक ज्ञान नहीं, क्योंकि भौतिक ज्ञान केवल भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकता है, और दिव्य ज्ञान क्या प्रदान करेगा? दिव्य वस्तुएं। तो इसीलिए यहां पर असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसलिए ज्ञान की तुलना ज्योति से की गई है, जैसे अज्ञान की तुलना अंधकार तमस से की गई है, तो ज्ञान की तुलना ज्योति से की गई है। जैसे कि अब इस कमरे में अचानक लाइट चली जाए तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, और पूरे अंधेरे में यदि फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्टील का ग्लास कहां रखा हुआ है, तो कुछ पता नहीं, अरे मैं कहां पर खड़ा हूं कुछ पता नहीं। तो अंधकार में कुछ समझ में नहीं आता, और अंधकार की वजह से भय उत्पन्न होता है, और उस अंधकार को दूर करने के लिए क्या करना है? लाइट ऑन करना है। अब देखिए यदि इस कमरे में अंधकार हुआ हो सालों साल, 20 साल तक इस कमरे में अंधकार रहा, और अब जब लाइट ऑन करते हैं तो कितना समय लगता है लाइट ऑन होने में? कुछ सेकंड। तो चाहे कितना भी गहरा या पुराना अंधकार हो, एक सेकंड में ज्योति जलती है तो सारा अंधकार दूर। तो इसलिए कहा गया है कि चाहे हम कितने भी तमस में क्यों न रहे हों, कितने भी जन्म जन्मांतर तक, जब हम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं, विशेष रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो वो ज्योति जलने के समान है, तुरंत सारा अंधकार दूर होता है। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के एक बहुत ही प्रमुख शिष्य, जो कि अब तक 30 से 35 साल हो गए, वो रोज प्रभुपाद जी की पुस्तक वितरण करते हैं, वैशेषिक प्रभु। तो वो एक घटना सुना रहे थे कि एक बार वो पुस्तक वितरण कर रहे थे, और वो पुस्तक के साथ कुछ प्रसाद भी रखते हैं। प्रभुपाद जी के जब प्रभुपाद जी थे उस समय भक्तों ने एक बहुत ही सरल सी और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई प्रभुपाद जी को एक बार चखाई थी, जो कि केवल मिल्क पाउडर, चीनी और मक्खन इससे बनती है, इसे कहते हैं। प्रभुपाद जी ने जब उसे चखी, उसके उसका लड्डू, प्रभुपाद जी ने उसे नाम दिया सिंपली वंडरफुल, और तब से वो इस्कॉन में बहुत प्रख्यात मिठाई वंडरफुल। प्रभुपाद जी एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे, जब उन्होंने वो सिंपली वंडरफुल खाया तो प्रभुपाद जी ने कहा, यू सिंपली डिस्ट्रीब्यूट सिंपली वंडरफुल एंड एनी वन हु टेस्ट सिंपली वंडरफुल विल बिकम सिंपली वंडरफुल। and will develop love for simply wonderful. That is Krishna. So, ये वैशेषिका प्रभु वो सिंपली वंडरफुल छोटे छोटे से उसके लड्डू अपने साथ रखते थे. तो उन्होंने देखा कि एक परिवार एक आइसक्रीम पार्लर के सामने आइसक्रीम खरीद रहे थे परिवार वाले. तो उनमें से जो लड़का था उसके हाथ में एक आइसक्रीम कोन आइसक्रीम था. तो वैशेषिका प्रभु ने सिंपली वंडरफुल उसे बोला कि इसे भी खा के देखो आइसक्रीम के साथ. तो उन्हें देखा सफेद रंग का गोल गोल दिखने में और सुगंध लिया इतना अच्छा मक्खन और चीनी इसका सुगंध. तुरंत उसने मुंह में डाल दिया. जैसे ही मुंह में डाल दिया उसने इतना अच्छा लगा उसे वो सिंपली वंडरफुल. उसने वो अपनी आइसक्रीम पिताजी को कहा आप पकड़ो थोड़ा इसे. पिताजी को हाथ में थमा दी और कहा कि और लाओ. तो वैशेषिका प्रभु ने और दोनों हाथ में सिंपली वंडरफुल के लड्डू दे दिए. तो उस लड़के की जो बहन थी उसके हाथ में भी एक कोन आइसक्रीम. उसने देखा कि मेरा भाई ये क्या खा रहा है. उसने आइसक्रीम को त्याग दिया. तो उसने भी अपनी आइसक्रीम पिताजी को थमा दी पकड़ो. पिताजी दोनों की आइसक्रीम लेके खुद की भी आइसक्रीम इन दोनों की आइसक्रीम लेकर चार चार आइसक्रीम लेकर वो खड़े हैं और ये दोनों सिंपली वंडरफुल यहां से वहां अंदर बकाबक खा रहे हैं. तो पिताजी ने सोचा कि ये दोनों इतना आनंद ले रहे हैं सिंपली वंडरफुल में तो मुझे भी ये सिंपली वंडरफुल खाना चाहिए. तूने देखा मैं ये आइसक्रीम किसे थमाऊं. तो उन्होंने वो कचरे के डब्बे में डाल दिया. चारों आइसक्रीम कचरे के डब्बे में डालकर मुझे भी दो. तो वैशेषिका प्रभु बता रहे थे कि हमारी स्थिति भी इस भौतिक संसार में इस परिवार के जैसी ही थी कि हम भी हमारा जो भौतिक इंद्रिय भोग है उस आइसक्रीम के समान पकड़े हुए थे. और प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आकर उन्होंने कहा सिंपली वंडरफुल खाना है देखना है चखना एक बार. तो शुरू में हमारी स्थिति उस लड़के के समान थी जिसने एक हाथ में आइसक्रीम भी पकड़ा था और उसने वो लड्डू चख लिया. जैसे उसने चख लिया ये पकड़ो क्योंकि अब उसे दोनों हाथ में उसे लेना था लड्डू को. और फिर पिताजी जिनके हाथ में दोनों हाथ में वो आइसक्रीम थी जब पिताजी को लेना था तो पिताजी ने क्या किया. पिताजी ने फिर उसे कचरे में फेंका. तब जाकर वो उस सिंपली वंडरफुल को ले सके. तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार में दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेगी. इस संसार का इंद्रिय भोग और कृष्ण सिंपली वंडरफुल ये दोनों चीज एक साथ नहीं मिलने वाली. जब सिंपली वंडरफुल दिया जाता है तो शुरुआत में तो कहा जाता है कि एक हाथ से ले लो दूसरे हाथ में तो आइसक्रीम है. परंतु आगे चलकर यदि और इसका आस्वादन करना है तो फिर हमें उसे त्यागना होगा. जब तक उस भौतिक इंद्रिय भोग को नहीं त्यागेंगे तब तक इसका पूर्ण आस्वादन नहीं हो पाएगा. इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि इस भौतिक संसार का जो भी ज्ञान है चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान हो इस भौतिक संसार का वो केवल हमें भौतिक वस्तु ही प्रदान करेगा. चाहे कोई पीएचडी भी क्यों ना हो डबल ट्रिपल पीएचडी क्यों ना हो उससे भी आगे कुछ होता है. हालांकि हम जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी हम पीएचडी कहते हैं परम हंस दास पीएचडी. क्योंकि वो परम हंसों के दास हैं इसलिए वास्तविक ज्ञान उन्हें मिला है दिव्य ज्ञान. और इस भौतिक संसार का जो भी ज्ञान आप लें वो केवल भौतिक पदार्थ ही दिलाएगा, और भौतिक पदार्थ का अर्थ है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जैसे एक बार एक गांव का एक ब्राह्मण था, और ये ब्राह्मण, इसकी एक बार इच्छा हुई कि मेरा जो सादा ब्राह्मण का जीवन है इसमें थोड़ी सी तकलीफ है, ज्यादा नहीं, और मैं ज्यादा इच्छा नहीं करता कुछ भौतिक। हमारी भी स्थिति कई बार ऐसी होती है भक्ति में कि मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जो मेरा बकाया बाकी है लोन या ये एक वस्तु मेरे को खरीदनी है, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। लालची मैं नहीं हूं। तो ये ब्राह्मण भी सोच रहा था कि यदि मुझे केवल 2 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए, 2 बस, ज्यादा नहीं, 1-2 बस, यदि 2 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो जो मेरा छोटा मोटा खरीदना इत्यादि जो कुछ है वो सब कुछ सेटल हो जाए। तो ये इच्छा उसके अंदर आई, 2 स्वर्ण मुद्रा। तो अपने मित्र को उसने कहा कि ऐसे ऐसी मेरी एक इच्छा है तो कुछ बताओ। मैं बोले अरे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपना जो राजा है वो बहुत दानवीर है और उसका एक नियम है, सुबह उठते सो वो सबसे पहले जिस ब्राह्मण को देखता है उसे वो स्वर्ण मुद्रा दे देता है, 2। बोला सही में? हाँ। तो बस तुम केवल इतना प्रयोजन कर लो कि अपने राजा के सामने प्रकट हो जाओ उठते सो, तो यदि उसने तुम्हें सबसे पहले देख लिया तो तुम्हें मिल जाए। तो इसने सोचा ये तो बहुत सरल है, 2 स्वर्ण मुद्रा केवल राजा के सामने मुंह दिखाई मिलने वाली है। तो इसने सोचा कि यदि मैं सुबह सुबह जाऊंगा तो हो सकता है कि कोई ब्राह्मण वहां पर पहले से लाइन में खड़ा हो, तो पिछले एक दिन पहले ही मैं निकल जाता हूं शाम के समय और एक रात उधर ही बिताता हूं महल के इर्द गिर्द, और महल के इर्द गिर्द बिताऊंगा और जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले मैं महल के सामने अपने आप को लाइन में पहले खड़ा कर दूंगा। तो वो एक दिन पहले शाम के समय गया और राजमहल के चारों तरफ देख रहा था जगह कहां पर बाहर सोने की जगह मिलेगी, तो घूम रहा था क्योंकि राजमहल के आसपास तो कोई ऐसा सो नहीं सकता, वहां पर तो पहरा रहता है पहरेदारों का। तो घूम रहा है, 1-2 घंटा बीत गया, कोई जगह नहीं मिली रात बिताने के लिए, और जो मुख्य पहरेदार था वो अपनी नजर डाले हुए था ये कौन घूम रहा है 2 घंटे से। तो अपने सैनिकों को भेजा, इसे पकड़कर लाओ। पकड़कर लाकर पूछा कौन हो भाई, क्यों घूम रहे हो यहां पर? नहीं ऐसे ही मैं घूम रहा था, ऐसे ही, चलो अंदर। और जेल में बंद कर दिया उसे, और जेल में बंद कर दिया, और ये भूल गया कि इसने किसी को जेल में बंद रखा है, राजा को बताना भूल गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना। तो एक दिन राजा टहलते हुए देखा कि देखते हैं कौन कौन कैदी है अंदर, तो जाकर देखा कि ये कौन है भाई, ये साधु जैसा कोई दिखता है। मैं कहा अरे मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए आया था, मैं सोचा कि 2 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी और यहां पर तो 1 महीने से बंद करके रखा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आया नहीं, जिसने बंद किया था पता नहीं क्यों बंद किया। तो राजा ने जब ये सुना तो तुरंत बोला खोलो इसे भाई, ये तो निर्दोष दिखता है। और पूछा सब कुछ कि क्यों घूम रहे थे, क्यों किस लिए आए थे, तो पता लगा कि दो स्वर्ण मुद्रा चाहिए थी। बोले अरे पहले बताते, दे दो इसे जितनी चाहिए उतनी दे दो, जितनी चाहिए उतनी। तो ये घर गया, बोलता है पत्नी से पूछ के आता, असली फिगर पत्नी बताएगी। तो घर पे गए, तो घर पे पत्नी ने कहा अरे जब कहा है जितनी चाहो उतनी मांगो, 10,000 स्वर्ण मुद्रा मांग लो। तो ये ब्राह्मण सोचने लगा कि मैंने शुरुआत में इच्छा की थी 2 स्वर्ण मुद्रा की, और 2 स्वर्ण मुद्रा की इच्छा को लेकर मुझे बिताना पड़ा, तो 2 स्वर्ण मुद्रा और 1 महीना जेल। मेरी पत्नी कहती है 10 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 महीना जेल के अंदर, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। राजा को जाकर कहा मुझे कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए, ये रखो आपके पास स्वर्ण मुद्रा, मैं अपने झोपड़े में संतुष्ट हूं। तो हमारे साधना भक्ति में भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, भक्ति है 16 माला भी चल रहा है, 4 नियम तो पता नहीं कितने वर्षों से, पता नहीं सदियां बीत गई चाय नहीं पी मैंने, तो सब कुछ चल रहा है, परंतु फिर माया सामने रखती 2 स्वर्ण मुद्रा, ज्यादा नहीं 2 केवल। और कई बार उस 2 स्वर्ण मुद्रा को प्राप्त करने के पीछे कितना हमें भ्रमण करना पड़ता है, और भ्रमण करने के वजह से अंदर भी जाना पड़ता है। तो हमें साक्षात्कार हो जाना चाहिए कि इस भौतिक संसार में चाहे 1 स्वर्ण मुद्रा, 2 स्वर्ण मुद्रा या 10,000 स्वर्ण मुद्रा, उसके साथ जेल निश्चित है। तो इस संसार का जो इंद्रिय भोग है, साथ उस इंद्रिय भोग का बिल भी आएगा, पेमेंट अवश्य करना है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं अपिचेदसि पापेभ्य, अपिचेत असी पापेभ्य, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन चाहे तुम पापियों में सबसे बड़े पापी क्यों न हो, परंतु सर्वभ्य पापकृतम सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, जब तुम उस नाव पर आरूढ़ होगे, और उस नाव की तुलना की गई है दिव्य ज्ञान से। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस भौतिक संसार की तुलना हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से की गई है। इस भौतिक संसार की तुलना एक जंगल से की गई है, एक विशाल सागर समुद्र से की गई है। महाराज कुलशेखर भी अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं कि यह जो भौतिक संसार है एक विशाल समुद्र के समान है, और इस विशाल समुद्र में एक नाव है, और इस नाव के ऊपर एक पक्षी है, तो यह नाव जब समुद्र के अंदर जाती है तो ये पक्षी जो नाव के ऊपर बैठा है सोचता है कि थोड़ा उड़कर देखता हूं ये समुद्र में क्या क्या है। तो समुद्र के मध्य में नाव और उसके अंदर का पक्षी जब उड़ने का प्रयास करेगा तो कहां तक उड़ पाएगा। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि उड़ उड़कर कहां तक जाएगा, वापस कहां आना है उसे, उस नाव का ही सहारा लेना है। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में ये जो भव सागर है इसे पार करने के लिए एकमात्र नाव है भगवान के चरण कमल, और हमारी तुलना उस पक्षी से की गई है जो कभी कभी चरण कमल का सहारा तो लेते हैं परंतु इच्छा करते हैं थोड़ा भव सागर का भ्रमण भी कर कर आऊं, तो वो कहते हैं कहां तक भ्रमण करेंगे, कौन सी योनियों में जाकर क्या क्या हम देखेंगे। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पर थे नेपाल के, वहां पर टीवी में सामने ये जानवरों का कुछ कार्यक्रम आ रहा था और ये बड़े बड़े वैज्ञानिक इत्यादि ये सभी अपने कैमरा ये सब ले जाकर जानवरों को शूट कर रहे हैं। और एक व्यक्ति वो 6 महीने से जंगल में था, सांप का जीवन क्या होता है उसको शूट कर रहा है वो, और वो जीवन क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन, शास्त्र में पहले कह दिया। उसको 6 महीने से लगा हुआ है, कभी इस पेड़ के ऊपर कभी पेड़ के नीचे यहां वहां तिकड़म कर कर, और बता रहा है सांप अभी खा रहा है। अरे तो खाएगा नहीं तो क्या जिएगा कैसे हो, अभी सांप उस चूहे को खाएगा, वो चूहा घूम रहा है, अरे सांप तो चूहे को ही खाएगा, वो चूहा नहीं मिला तो तुम्हें खाएगा नहीं तो। और फिर सभी वो एक टक होकर उस कार्यक्रम को देखते, अरे देखो क्या शूटिंग किया है, क्या एंगल है, क्या कैमरा है, क्या फोटो है, अरे अंततः है क्या, आहार निद्रा भय और मैथुन यही चल रहा है। चाहे कोई भी योनि का फोटो खींचो आप, वही चल रहा है, सभी योनियों में वही चल रहा है। मनुष्य अपना फोटो खींचते हैं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर और इस शरीर को पॉलिश कर कर, और फिर अपना फोटो खींचाते देखो मैं कैसे खाता हूं। और वही कार्य एक चूहा एक सर्प एक कछुआ ये सब भी वही कर रहे हैं। तो चाहे हम कोई भी योनि में चले जाएं, यही सब कुछ चल रहा है, केवल उनका जो आइटम है वो अलग है, जगह अलग है, परंतु कार्य वही है। अच्छा, उसमें एक बहुत ही रोमांचक चीज दिखा रहे थे, ये गिरगिट होता है, गिरगिट, हाँ गिरगिट देखा है, नहीं देखा, टीवी देखा है तो गिरगिट देखा होगा। तो उसमें ये गिरगिट दिखा रहे थे कि ये गिरगिट इसकी जो जिह्वा है वो उस गिरगिट के लेंथ से कुछ 10 गुना ज्यादा आगे जाकर किसी कीड़े को पकड़कर खा सकता है, वो इतने लंबा ही उसकी जिह्वा, और वो जिह्वा में कुछ ऐसा पदार्थ होता है कि वो कीड़े को चिपका देता है, एरल्डाइट लगा हुआ रहता है अंदर, वो जिह्वा पर एरल्डाइट लगाया हुआ है, उसको खींचकर अंदर वो ले लेता है। तो अब वो उसमें 4 इंजीनियर को बुलाया गया, एक MIT का, कोई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ये सारे इंजीनियरों को बुलाया गया और इनको कहा कि तुम्हें ये गिरगिट की जिह्वा का एक उपकरण बनाना है कि गिरगिट की जिह्वा कैसे जाती है और 1 सेकेंड के अंदर कीड़े को पकड़कर अंदर मुंह में लेती है, तो ऐसा उपकरण तुम लोग बनाओ और वो उपकरण चलाने के लिए तुम्हें पेड़ की टहनी पर से चलाना होगा जिसकी दूरी पर एक कीड़े को लटकाया जाएगा। अब देखिए, ये लोग बता रहे थे कि वो जो गिरगिट है उसके अलग अलग गुण हैं, एक तो वो कितनी जल्दी पेड़ पर चढ़ता है और पेड़ पर चढ़ने के बाद उस पेड़ का रंग कैसे लेता है, वो रंग कैसे बदलता है। तो इन्होंने कहा वो सब तो असंभव है, आप लोग वो सब तो नहीं कर पाएंगे कभी, केवल इतना ऐसा एक उपकरण बनाओ कि उसकी जिह्वा के समान वो बाहर जाए अंदर खींचे कीड़े को। तो अब ऐसा उपकरण बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गए और कोई बड़े बड़े उपकरण वहां पर बनाए, और उसमें से वो सारा उपकरण बनाने में उन्हें कितने महीने लग गए। और वो बनाने के पश्चात फिर बड़े पेड़ के ऊपर टहनी पर से उनको जैसे गिरगिट चलता है वैसे चलकर जाना था, तो कितने बार तो वो लोग वहीं से गिर गए पूरा उपकरण लेकर नीचे। तब फिर वो गिरे ना, उसके लिए एक अलग से क्रेन लगाया गया, क्रेन लाया गया, क्रेन में रस्सी बांधकर उनके इधर कमर पर, और फिर कहा गया कि अब आप उस पे रेंगते हुए चलो। तो हम सोच रहे थे देखो ये गिरगिट भी यदि देखे तो हंसेगा इनके ऊपर कि मेरी जिह्वा में इतनी खूबी है, चार MIT के इंजीनियर अपना दिमाग नहीं लगा पाते कि एक कीड़े को कैसे पकड़े, और इतना सब कुछ करने के पश्चात उन्होंने जो कोई उपकरण बनाया था पहली बार जब वो उपकरण छोड़ा तो उपकरण वहीं पर गिर गया आगे चलकर नीचे। तो उन्हें समझ में आया कि ये जो सृष्टि ने स्वाभाविक रूप से एक साधारण से ग्रिड के अंदर जो एक जिह्वा डाली है वो भी हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, परंतु दिमाग ये नहीं लगाया कि जिह्वा क्यों डाली, केवल आहार निद्रा भय मैथुन वही कार्य, और हम भी वही कर रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं जाके पकड़ के अंदर, चाहे वो गिरगिट का हो या मनुष्य का। तो समझ लेना चाहिए कि हमें इस भौतिक संसार से यदि बाहर निकलना है तो एकमात्र नाव क्या है, भगवान के चरण कमलों की नाव। और जैसे महाराज कुलशेखर ने कहा कि वो पक्षी चाहे कितनी भी दूर भ्रमण कर इस भव सागर का निरीक्षण कर आ जाए, उसे फिर से उस नाव का सहारा लेना है। जब तक उस नाव का सहारा नहीं लेगा तब तक वो इस भव सागर को पार नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है और केवल एक नाव ही उस तैराक को बचा पाएगी। तो ये जो नाव है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, भगवान श्री कृष्ण का रूप, भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान श्री कृष्ण का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस एकमात्र यही हमारा सहारा है, और इस सहारे को यदि हम पकड़कर रखें अपने जीवन में तो चाहे उस भाव सागर में कितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां हमें निगलने के लिए तैयार क्यों ना हो, वो नाव बचा कर रखेगी हमें। तो इसे पकड़ कर रखें, और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने इस नाव को इतना विशाल बना दिया है कि इस नाव में हम कितने भी क्यों ना बैठ जाएं, ये नाव डूबने वाली नहीं है। ये हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कितने भी हम इस नाव में बैठ जाएं, और जितने अधिक बैठेंगे उतनी अधिक ये नाव बढ़ती जाएगी, ये ऐसी नाव है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अभी अगला बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव हम मनाने जाएंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो जन्म केवल भगवान साल में एक बार अवतरित नहीं होते या एक बार उनका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता। भगवान का जन्मोत्सव हम हर क्षण मना सकते हैं और मनाना चाहिए, परंतु विशेष रूप से जो तिथि आती है भगवान की जन्माष्टमी की हर साल, वो आगे 2 महीने के पश्चात आने वाली है और हम इस हफ्ते 20 तारीख को हम जा रहे हैं 2 महीने के लिए प्रचार के लिए। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग भगवान के इस जन्माष्टमी महोत्सव में केवल एक स्पेक्टेटर के रूप में भाग मत लीजिए, बल्कि भगवान की विशेष कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बार अपने एक प्रवचन में कहा कि हमें शरणागत होना है भगवान से अधिक भगवान की सेवा को। ज्यादातर लोग इस संसार में कहते हैं मेरे अंदर भगवान के प्रति भक्ति है, और आप सेवा क्या कर रहे हैं भगवान? सेवा नहीं, भक्ति ही सेवा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया, भक्ति का अनुवाद किया, भक्तिमय सेवा। तो हम अनुरोध करेंगे हम आप सब से कि किसी ना किसी प्रकार से ये साल में एक बार हम जन्माष्टमी का इतना बड़ा महोत्सव मनाते हैं, हजारों व्यक्ति आते हैं नासिक के हमारे इस मंदिर में, तो हम अनुरोध करेंगे कि आपसे जो कुछ बन पड़े आप सेवा अपनी प्रदान कीजिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उसके साथ साथ अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। और आप सबसे मैं अनुमति, आज्ञा और कृपा मांगना चाहूंगा कि 2 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं तो वहां पर जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक हम जो सेवा प्रभुपाद जी ने दी है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों की अनुमति है और नासिक के जो भक्त हैं वो इतने प्रेमल हैं कि छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, परंतु ड्यूटी है तो ड्यूटी निभानी होगी और मन यहीं पर रहा रहेगा, परंतु फिर भी आपसे हम आज्ञा मांगना चाहेंगे कि आपकी आज्ञा होगी और आपकी प्रार्थनाएं होंगी तो प्रभुपाद जी की कुछ सेवा हम कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी की जय।